ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्वशक्तिवान बाप जो गुणों का भंडार है, जिसके अंदर सर्वशक्तियां और सर्वगुण हैं, वो इस सृष्टि के ऊपर आकर के हम बच्चों को आप समान बनाने की मेहनत करते हैं। हम लोग तो भक्ति में गायन करते थे कि मैं निर्गुण हारे में को गुण नहीं, आप ही तरस पड़ोगी, परंतु मालूम नहीं था वो ऐसा तरस करेगा हमारे ऊपर और अपना बना करके हम बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करें। बाप दादा की जब एक एक मुरली सुनते हैं तो बाबा कितना प्यार से बैठ करके बच्चों को समझाता है। बाबा की हर मुरली में पहली लाइन तो यही होती है कि मीठे बच्चे, हालांकि उसको ये मालूम है कि हम कितने मीठे हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता है, पर वो जानते हुए भी मीठे बच्चे कह के हम बच्चों को मीठा बना के ही छोड़ेगा, उसके बिगड़ नहीं छोड़े, क्योंकि वो भगवान। तो आज हम जिस स्नेह और शक्ति के बैलेंस की बात करते हैं, सबसे पहले तो स्नेह और शक्ति दोनों हमारे में कैसे भरे ये देखने की बात है, पीछे बैलेंस की बात हो। जब किसी को टांगे ही नहीं है तो बेचारा बैलेंस कहां से रखेगा। तो वैसा स्नेह और शक्ति जो है, इसको कैसे प्राप्त किया जावे, पहले थोड़ा उसके ऊपर विचार करते हैं, फिर देखेंगे कि बैलेंस कैसा रखना है। हमें ज्यादा देखने की सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है वैसे तो, क्योंकि हमें कोई नया रास्ता तो ढूंढना नहीं है, हमें तो सिर्फ साकार बाप को फॉलो करना है। कोई भी जब नया रास्ता ढूंढना होता है तो मेहनत करनी पड़ती है, परंतु अगर कोई रास्ता बताने वाला आगे आगे चलता है तो कोई मेहनत नहीं होती। और बाबा ने हम बच्चों को हमारे पुरुषार्थ का बड़ा शॉर्टकट बताया हुआ है, सी फादर और फॉलो फादर। वैसे किसी भी स्कूल और कॉलेज में अगर स्टूडेंट कोई कॉपी करते हैं तो उनको परीक्षा के समय बाहर निकाल देते हैं, डिसमिस भी कर देते हैं, परंतु हमारा जो सुप्रीम टीचर है वो हम बच्चों को छूट देता है कि आप ब्रह्मा बाप की कॉपी करो, कॉपी नहीं परंतु कार्बन कॉपी करो। और अभी समय बदली हो गया इसीलिए कहता है वी फोटोस्टेट कॉपी करो, क्योंकि कार्बन कॉपी में भी कभी कभी लकीरें आ जाती है, थोड़ा कभी दिखाई पड़ता है नहीं पड़ता है। तो जब बाबा ने इतना हम बच्चों को छूट दे दिया है, शिव बाबा निराकार होते हुए गुण शक्तियां जो भी ईश्वरीय प्राप्तियां हैं उसने वो हम बच्चों को ब्रह्मा बाप के द्वारा साकार करके बताई। इसीलिए हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। अभी सबसे पहले हम प्रेम की शक्ति को देंगे, क्योंकि बाबा प्रेम का सागर है और ये दुनिया जो है ये प्रेम की भूखी है। इसीलिए ये कि गीत गाते रहते हैं, तू प्यार का सागर है और तेरे एक बूंद के प्यासे हम। वो एक बूंद के प्यासे हैं और हम ब्राह्मण बच्चे रोज प्यार के सागर में डुबकियां लगाते हैं। कितना महान अंतर है देखो। प्यार ऐसी चीज है जो पत्थर को भी पानी कर देती है। प्यार ऐसी चीज है जो बिछड़े हुए संबंध है उसको जोड़ देती है। इसीलिए कहा जाता है प्यार ये सुई धागे का काम करती है। जैसा सुई धागा फटे हुए कपड़े को सिलाई कर देता है, वैसा ही प्रेम ऐसा है दो दिलों को मिला देता है। क्योंकि हम जो नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, उस नई दुनिया में सब एक मत होकर के चलने वाले, इसीलिए बाबा ने हम बच्चों के ऊपर ये बहुत बड़ा काम रखा है कि बच्चे तुम्हें नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन करना है। अभी कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने भी कॉन्ट्रैक्ट उठाया है उसका कि हम जरूर बाप के साथ साथ नई दुनिया स्थापन करेंगे। परंतु हमें स्थूल में तो कुछ ऐसा नहीं, मिट्टी गारा उठाना है, वो तो हमें कुछ नहीं करना है, परंतु सबके दिलियों को मिलाने का काम करना। और वो जो सबके दिलियों को मिलाने का काम है वो प्रेम के आधार पर ही हो सकता है, स्नेह के आधार पर ही हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। उसकी यादगार आज भी हम लोग वैजयंती माला देखते हैं। वैजयंती माला में हरेक दाना दाने के साथ मिला हुआ है पर जुड़ा हुआ नहीं। बाबा ने हमें प्रेम सिखाया है, अटैचमेंट नहीं सिखाई। अगर अटैचमेंट है तो वो विजय माला का दाना नहीं बन सकता है। प्रेम के आधार पर हम विजय माला का दाना बनते हैं। प्रेम के आधार पर हम प्रेम वाली दुनिया में जाते हैं जहां शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते। बेहद के बाबा ने आकर के हम बच्चों को कल पहले वाली स्मृति दिलाई कि तुम आत्माएं आदि और अनादि स्वरूप में भी प्रेम स्वरूप। तुम्हारा आदि अनादि स्वरूप ही प्रेम स्वरूप है। जब स्वस्वरूप की सीट के ऊपर आत्मा स्थित हो जाती है तो उसके जो ओरिजिनल गुण है वो आपे ही मर्ज होने लगते हैं। इस प्रेम स्वरूप की स्थिति को बनाने के लिए हम सब एक ही पिता की संतान हैं। हमारा बाबा प्यार का सागर है, हम उसके बच्चे मास्टर प्यार के सागर। इस स्मृति के द्वारा स्वतः ही सर्व के साथ प्यार की भावना उत्पन्न होती। उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को आत्मिक स्थिति में रहना सिखाया, भाई भाई की दृष्टि और वृत्ति बनाना सिखाया। जितना जितना हम रूहानी दृष्टि से एक दो को देखते हैं उतना उतना एक दो के लिए प्यार पैदा होता है। बाबा ने सृष्टि चक्र का ज्ञान दे करके कि तुम जो भी आपस में मिलते हो, ज्ञानी या अज्ञानी, 5000 बरस के बाद मिले। आज वैसे भी आप देखा जावे किसी का भाई या बहन गुम हो जाता है 5 दिन के बाद भी मिलता है तो कितनी खुशी होती है। यहाँ तो हम आपस में 5000 बरस के बाद मिलते हैं इसी नाम से, इसी रूप से, तो हमें आपस में कितना स्नेह होना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए, इसकी स्मृति। सृष्टि चक्र का ज्ञान दे के बाबा ने हम बच्चों को दिया। स्वस्वरूप में स्थित रह करके सर्व के साथ गुणग्राही दृष्टि बनाना सिखाया। जितना जितना हम औरों की विशेषताएं देखते हैं, जितना जितना औरों के गुण देखते हैं, उससे हमारे अंदर प्यार पैदा होता है, स्नेह पैदा होता है। परंतु आपसी स्नेह बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमारा एक के साथ, बाबा कहते हैं प्यार सबके साथ करो, स्नेह सबके साथ रखो, परंतु दिल का स्नेह सिर्फ एक के साथ ही रखो। तो जब हमारा एक के साथ दिल का स्नेह होता है तो हमें सारा विश्व प्यारा लगता है। बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध है, उन सर्व संबंधों की जब हम अनुभूति कर लेते हैं तो हमारा जो प्यार बट गया था वो सारा एक जगह पर आ जाता है। लोग गीत गाते हैं, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। बाबा कहता है अभी एक को दिल दो, दिला राम को दिल। एक शुरू शुरू की बात याद आती है बाबा की। शुरू में जब ऑलमाइटी बाबा का चलता था पाठ, तभी बाबा ने एक बारी मुरली चलाई। बाबा ने कहा देखो बच्चे, कराची में तुम बच्चों ने बिगर दिल वाले को अपनी दिल दिया है। दिल माना हार्ट, क्योंकि हमेशा दिल तो हार्ट का ही शेप बता। तुम बच्चों ने शिव बाबा को तो शरीर नहीं, तुमने बिगर दिल वाले को अपनी दिल दिया है, परंतु इस बिगर दिल वाले ने तुम्हारे दिल का कनेक्शन दिल वाले से कर दिया। इसीलिए आज इस माउंट आबू में दिल वाला मंदिर ब्रह्मा की यादगार। तो बाबा ने हम बच्चों को ये बताया कि कैसा हमारा दिल का प्यार एक के साथ रहे। जब एक के साथ हमारा टूट प्यार होता है तो नष्ट मोह स्मृति स्वरूप सहज बन जाती। सर्व संबंधों की जब अनुभूति करते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में हम गाते थे कि तू हमारा माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, सब कुछ है, पर उन अनुभव नहीं था। यहां हम लोगों ने जब सब अनुभव किया कि हमारे सर्व संबंध बाबा के साथ हैं, बाबा ये सर्व संबंधों की सैकरीन, उस अनुभव के बाद ये सारे संबंध फीके लगने लगे, ये सारा संसार फीका लगने लगा, निरस लगना लगा, और हमारा बुद्धि का योग दिल का प्यार एक के साथ जुट गए। तो बाबा अति प्यारे थे, प्यारा है। उस दिन भी बाबा की मुरली चल रही थी, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। स्वीटेस्ट तो एक ही बाबा है, वो स्वीट और स्वीटर वाली दुनिया स्थापन करता है। श्री कृष्ण को भी कितना स्वीट बना दिया। तो इसीलिए बाबा से, क्योंकि बाबा हम बच्चों को आप समान बनाता है, बाबा घड़ी घड़ी जो हम बच्चों को कहता है कि बच्चे मुझे याद करो, वो इसीलिए याद करो क्योंकि मेरे संग का रंग तुमको लग जाए। जितना जितना जिसका संग होता है, संग का रंग जरूर लगता है। जितनी जितनी बाबा की याद पक्की होती जाती है, बाबा के गुण और शक्तियां स्वतः ही हमारे अंदर आती जाती। तो इसीलिए उसको निरंतर याद करते हुए निस्वार्थ स्नेह उसके साथ चाहिए, और आपसी भी हमारा स्नेह निस्वार्थ स्नेह हो, मतलबी स्नेह नहीं हो, काम निकालने वाला स्नेह नहीं हो। भक्ति मार्ग में हमने भगवान से काम निकालने के लिए बहुत स्नेह किया। जिस समय कठिनाइयां आती थी तभी उसको याद कर लेते थे, और जब भी कठिनाई नहीं होती थी तो उसको भूल जाते। परंतु अभी निरंतर उसकी याद हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि उसकी विशेषताएं, उसकी शक्तियां, उसकी गुण हमें अपने अंदर भरना। और बाबा हमेशा हम बच्चों को सावधान करते हैं कि बच्चे कोई भी घड़ी तुम्हारी अंतिम घड़ी हो सकती है, इसीलिए अगर निरंतर बाबा की याद रहेगी तो अंत मते सुगते हो जाएगी। और अगर घड़ी घड़ी तुम कनेक्शन तोड़ते रहेगे बुद्धि का, तो बाबा के द्वारा सर्व शक्तियों का सप्लाई भी नहीं होगा तुम्हारे पास। इसीलिए विशेष अपने बुद्धि को एकाग्र करके बाबा से हमें जो गुण चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो हम सहज ही भर सकते। बाबा ने अपने अंदर शक्तियां निर्माण करने के लिए हम बच्चों को शक्ति स्वरूप बनाए। आज भी बाबा बता रहे थे, कल बाबा की मुरली में था, एक है देह भान और दूसरा है देह अभिमान। देह भान का भी बड़ा विस्तार है, देह अभिमान को तो सब जानते हैं, परंतु देह भान, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इस देह भान को भुलाने के लिए बाबा ने शुरू शुरू यज्ञ में ये प्रैक्टिस कराई कि ये भान भूल जावे। ये भान भूल जाएगा तो अभिमान भी भूल जाए। इसलिए बाबा ने खास बच्चों को, मैं शिव शक्ति, शिव शक्ति में दोनों भी आ जाते, मेल और फीमेल। उसके बाद शिव शक्ति कहेंगे तो शक्ति आ गई, अगर अपने को फीमेल समझेगे तो डर आता है। उसके बाद दूसरी प्रैक्टिस बाबा ने कराई, मैं विष्णु चतुर्भुज, उसमें भी दोनों आ जाते हैं, मेल फीमेल, तो देह का भान भूल जाता है, अपने को पुरुष समझेगे तो रोब आता है। तो ये रोब और मोह, अटैचमेंट भुलाने के लिए बाबा ने बच्चों को ये प्रैक्टिस कराई। अलग अलग बाबा प्रैक्टिस कराते थे, जिस प्रैक्टिस के आधार पर ही स्थिति परिपक्व बनती। तो अभी हम देखते हैं, एक तरह तो अभी स्नेह का अगर विस्तार करेंगे तो बहुत बड़ा है, परंतु दूसरा है, अभी एक तो हमें स्नेह और दूसरा है शक्ति। अभी बाबा से हमें शक्तियां लेनी है क्योंकि बाबा सर्वशक्तिवान। शक्ति लेने का आधार हम सभी को मालूम है कि हम बाबा से बुद्धि योग से शक्ति लेते हैं, ज्ञान के द्वारा हमारे को शक्ति मिलती है। हम जितना जितना पढ़ाई में आगे बढ़ते जाते हैं, जितना जितना ज्ञान की गहराई में जाते हैं, ये ज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान सिर्फ अमृत नहीं है, ये ज्ञान जो है ये शक्ति भी, वही ज्ञान शक्ति का रूप ले लेती है, वही ज्ञान शस्त्रों का रूप ले लेती है। अभी नवरात्रि चल रही है, आप देवियों की मूर्तियां देखो, देवियों के नयनों में रहम, उनके नयनों में स्नेह है, परंतु उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र, बैलेंस है, खराब वृत्तियों को खलास करने के लिए, आसुरी विचारों को खलास करने के लिए ज्ञान के अस्त्र शस्त्र पकड़ाए हुए। तो जितना जितना हमें ज्ञान का मनन और चिंतन, ज्ञान की गहराई, उसमें हम जितना जितना जाते हैं, सारा समय उसमें बिजी रहते हैं, तो ये ज्ञान शस्त्र बन के हमारे पास आ जाते हैं। और जिस समय पर जिस शस्त्र की आवश्यकता है, जैसी परिस्थिति वैसा हम इसको यूज कर सकते। तो ज्ञान तो बाबा की हम जैसे जैसे मुरली सुनते हैं, मुरली सुनने के बाद उसकी गहराई में जाके उसको अपनाते हैं, वो शक्ति का रूप लेता है। इसीलिए कहा जाता है ज्ञान तलवार ड्रामा की ढाल है। पहले जमाने में जब युद्ध के मैदान में जाते थे, तलवारों से युद्ध होता था तो योद्धे हाथ में ढाल पकड़ते थे। सामने वाला जब ही तलवार चलाता था तो ये अपने को बचाते थे ढाल के द्वारा। खड़क है, ज्ञान का खड़क है। तो अलग अलग अस्त्र शस्त्र दिए हुए बाबा ने, उन्होंने फिर स्थूल अस्त्र शस्त्र दे दिया देवियों। तो ये वास्तव में ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है, परंतु इनको जब हम अपनाते हैं, उस लगन से हम जब बाबा की मुरली सुनते हैं तो उसका रूप बदली हो जाता है, उससे हमें शक्ति मिल जाती है, शस्त्र मिल जाते हैं। शस्त्र कितनी बड़ी शक्ति है शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। इसीलिए हमारा पढ़ाई की तरफ बहुत ध्यान होना चाहिए, सुनकर के उसको अपनाने की लगन होनी चाहिए, उसकी गहराई में जाने की आवश्यकता है। दूसरी बात, बाबा के द्वारा बुद्धि का योग लगा के तो हम शक्तियां देते ही हैं, सेवा से भी हमें शक्ति मिलती है। हम जितनी जितनी सेवाएं करते हैं, चाहे यज्ञ सेवा स्थूल में करें, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को पैदा ही सेवा के लिए किया हुआ। बाबा कहता है अपने से पूछो तुम ब्राह्मण क्यों बने, बाबा ने तुमको ब्राह्मण क्यों बनाया, तुम्हारे लिए युग ही स्पेशल बनाया बाबा ने क्यों, क्योंकि उसको रुद्र ज्ञान यज्ञ रचना था। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल ब्राह्मणों के बगैर कोई नहीं कर सकता। तो तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, जिस भी प्रकार की हम सेवा करते हैं, आपको देखने में ऐसा लगता है हमको खुशी मिली, सिर्फ खुशी नहीं मिलती है, हमको उससे शक्ति भी मिलती, ताकत भी मिलती है, हमारे को आगे बढ़ने की ताकत मिलती। और सबसे बड़ा बल हमारे पास दुआओं का बल होता है। हम जितना जितना आत्माओं को सुख देते, जितना जितना उनके मददगार बनते हैं, आज आपने बाबा की मुरली में लास्ट में सुना होगा कि बच्चे तुम्हें जो भी करना है अभी करो, आगे चल के तो बाबा के बहुत बच्चे बढ़ जाएंगे, तभी आवश्यकता नहीं हो। आवश्यकता के समय अगर हम किसी को भी हेल्प करते हैं, अच्छे कार्य में हेल्प करते हैं, तो वो पुण्य के खाते में जमा होता। वो पुण्य का खाता क्या है, वो शक्ति तो है, पुण्य की ताकत से हम पुण्य आत्मा बन जाते। तो इसीलिए ये जो शक्तियां जमा करने का तरीका है, इसमें हमें हमेशा ध्यान देकर के शक्तियों को जमा करते जाना, गुणों को जमा करते जाना है, अपने अंदर धारण करते जाना है। तभी जब शक्तियां और गुण हमारे अंदर हो गए, तभी बैलेंस की बात आई। तो अगर साकार बाबा की जीवन कहानी देखेंगे तो उसमें बाबा के पास दोनों भी बातें थी, शक्ति भी थी तो गुण भी थे, स्नेह भी था शक्ति भी थी। ब्रिजेंद्र दादी सुनाती थी, जिस समय यज्ञ की स्थापना हुई उस समय माताएं जिनको बिल्कुल घर से छुट्टी नहीं मिलती थी, वो भाग भाग के आई और छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेकर के आई। ऐसे भी बच्चे थे, थोड़े बड़े भी बच्चे थे, परंतु सिंध वालों ने कितने अत्याचार किए, कितने तरीके अपनाए इनको वापस घर ले जाने के लिए, परंतु सब में वो फेल हो गए। फिर उन्होंने, क्योंकि बाबा ने इन छोटे बच्चों को बहुत प्यार से पाला, गुलजार दादी से सुनते थे ना कैसा वो जैसा ठाकुरों की पूजा करता था, कितना संभालता था बाबा। तो फिर इन्होंने देखा कि अरे ये तो वापस ही नहीं आती। उन्होंने लास्ट शस्त्र निकाला और ये वो शस्त्र ये निकाला। कोर्ट से आर्डर आया कि जो भी बालिक है, छोटे है, 16 वर्ष से कम है, उनको अपने पेरेंट्स के पास भेजना चाहिए। भले माँ इधर है, परंतु उनके जो भी है, पिता है या जो है, उनके पास उनको भेजना है। छोटे छोटे बच्चे थे, अभी बाबा ने उनको इतना पाला हुआ था, अब क्या समझ सकते। बहुत बच्चे थे, 50-60 तो हो गए आराम से, ज्यादा ही हो गए। फिर बाबा ने उन छोटे बच्चों को, देखो बाबा का कितना स्नेह था, छोटे बच्चों को बाबा ने छोटा छोटा, जैसा नहीं आजकल बच्चे बस्ता लगाते पीछे, वैसा उसमें चार चार ड्रेस, टूथ ब्रश, साबुन, हर एक चीज जो भी आवश्यकता की है वो सब नया बना करके और सब बच्चों को एक एक को दिया, बैग दिया। और चार जो दादियां थी उनको बोला, क्योंकि वो कोर्ट का जो ऑर्डर था कि ये लोग जहां से ले गए आश्रम से जाके नहीं लेंगे, ये वहां पर एक ये था रतनलाल मोटा, नहीं सॉरी अला बख्श था, मिनिस्टर था वहां सिंध का, तो वो अला बख्श से जाके वो जाके इन बच्चों को ले गए वहां, और उनके आश्रम वाले उनको वहां छोड़े गए बच्चों। तो इन दादियों को बोला तुम बच्चों को वहां लेके जाओ और इनके आएंगे पेरेंट्स उनको दे दें। अभी इन लोगों ने तो उनको तैयार किया, सब कुछ किया, बच्चों को तो मालूम ही नहीं था हम कहां जा रहे हो, तो खुशी खुशी जा रहे थे। और वो लोग जो लेने को आए वो भी बहुत खुशी खुशी से, वो तो समझा हम बरात लेके आए हैं, रिश्तेदारों को लेके आए, गाड़ियां सजा करके आए, क्या नहीं करके आए उन्होंने, क्योंकि उनको मालूम है अगर माताओं से बच्चे छीने जावे तो मोह वश खुद ही आएगी, उनको बुलाना नहीं पड़ेगा, ये उनका लास्ट शस्त्र था। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, बाबा ने कहा जाओ बच्ची तुम इनको छोड़ के आओ वहां। तो ब्रजेंद्र दादी और ये लोग सब थे, तो इनको भी बहुत दुख हो रहा था, ये कैसा कर लेके जाए इतने बच्चे, बाबा बाबा करने वाले सारा समय, बाबा इतना उनको संभालता था, सब संभालता। तो लेके गए, उनके सब आए रिश्तेदार लेने को। जब बच्चों को मालूम पड़ा कि हमारे को इनके साथ जाना है, तो जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने लेथड़ी पहनना चालू कर दिया, मिट्टी में लेथड़ी पहनते ना बच्चे, ऐसे रोवे रोवे रोवे, बाबा बाबा हमको बाबा के पास जाना है, हमको नहीं जाना है इनके पास, हमको तो बाबा के ही पास जाना है। वो माँ बाबा को तो नहीं पहचानते थे, बाबा को ही पहचानते थे, क्योंकि हॉस्टल में रहते थे, दीदियां दादियां संभालती थी उनको। उनको देख के अल्लाह बख्श की आंख में भी पानी आ गया, अरे बोला ये क्या है, बाबा ने इनको कितना प्रेम दिया है जो अपने रिश्तेदारों के पास जाने को तैयार नहीं। फिर वो तो खींच तान के उनको गाड़ियों में बिठा के भगा के ले गए। चार पांच दिन के बाद वो बच्चे भाग के वापस आ गए आश्रम में, इधर उधर से जितने भी आ सके। फिर वो आए रिश्तेदार अला बख्श के पास, उसको बोला हमारे बच्चे तो भाग के वापस आश्रम में चले गए, आप हमको लेके दो। वो बोला खबरदार अगर तुम इधर आए तो, तुमने क्या दिया उन बच्चों को, दादा ने देखो उनको कितना प्यार दिया, कितना स्नेह दिया, जो वो दादा के पास वापस भाग भाग के जा रहे। तो स्नेह की ऐसी शक्ति है, फिर तो छूट गए ना वो, तो उसने मना कर दिया। तो बाबा ने ये प्रैक्टिकल में करके बताया कि स्नेह क्या चीज है, परंतु जितना स्नेह बताया उतना ही बाबा न्यारा भी रहा, शक्ति रूप भी रहा। हम सब जो भाई बहने हैं पुराने, उनको अनुभव है, जब पार्टियां लेके मधुबन में जाते थे और वहां जाने के बाद बाबा जो खातरी करते थे, बाबा जो प्यार देते थे, बाबा जो पालना करते थे, आने का मन नहीं होता था। कितने कितने बुजुर्ग बड़े बड़े लोग रो रो के आते थे, परंतु हम देखते थे बाबा एकदम न्यूट्रल ऐसा पीछे होके खड़ा रहेगा हाथ पीछे करके, जैसा कुछ है ही नहीं ऐसा दिखाई। तो स्नेह भी है परंतु नष्ट मुआ होने की शक्ति भी, वो ताकत भी है। तो इसीलिए हमें भी बाबा ये सिखाता है कि आज सबसे ज्यादा स्नेह हरेक को किससे होता है, खुद से। भले आप बोलेंगे शिव बाबा से, खुद से हरेक को बहुत ज्यादा स्नेह, परंतु खुद को सुधारने के लिए स्नेह काम नहीं आते। खुद को अगर मेरे को सुधारना है, मुझे मेरे संस्कार बदली करने हैं, बाबा कहते हैं काली का रूप ले। वो तुम्हारा स्नेह कुछ नहीं काम करेगा, इसमें बैलेंस चाहिए हमको। खुद से प्यार नहीं करो ऐसे नहीं, खुद के जीवन से भले प्यार हो में, परंतु जब तक हम शक्ति का रूप नहीं लेते हैं तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। ये बैलेंस चाहिए हमारे पास कि मुझे बदलना है, मुझे मेरे संस्कार बदलाने हैं। डरो नहीं उनसे, निगेटिव नहीं सोचो, पता नहीं ये बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, पता नहीं मेरे में परिवर्तन होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं ही अर्जुन हूं, मेरे को ही परिवर्तन करना है, जैसा ब्रह्मा बाबा ने की। आज सामने जो भी हमारे कनेक्शन में, उनके संस्कारों को बदलने की भी हमारे अंदर समझो हमारी जवाबदारी है, वो भी ठीक करने की। परंतु अगर शक्ति नहीं है, भय है, तो बाबा कहते हैं उनको सामने वाले जो तुम्हारे संबंध संपर्क में हैं, उनको परिवर्तन करने के लिए भी तुम्हारे अंदर ताकत चाहिए, निर्भयता चाहिए। मम्मा के अंदर ये ट्रिक थी, इसीलिए कोई भी गलती करता था और मम्मा के पास जब ये आते थे, मम्मा को आगे कंप्लेन करके जाता था, मम्मा फलाने ने, अभी आप समझ सकते 450 भाई बहन रहते थे, एक के संस्कार न मिले दूसरे से, एक के स्वभाव नहीं मिले दूसरे से, सब वन वन की काठी। पर इतने 450 रहते थे, अपने अपने हिसाब से रहते थे, कोई किसी से डिस्टर्ब होता था तो मम्मा का आके बताता था, मम्मा सारा सुन के लेती थी, सुन के लेके फिर उसको बोलती थी, अच्छा तूने तेरे साथ ये किया ना, वो ऐसा है, वो सारा सब बोलेगा जो मेरे साथ ऐसा करता है, ये करता है, वो करता है। फिर आखिर फिर मम्मा बोलेगी, अच्छा ऐसा है ना, अभी उसमें इतनी बुराइयां है ना, अभी कोई अच्छा ही है उसमें, हाँ हाँ मम्मा उसमें ये अच्छा ही है। तो मम्मा कहती थी, उसका गुस्सा ही कम हो जाता था जब अच्छा ही वर्णन करता था। फिर मम्मा कहती थी, अच्छा मैं उसको समझा देगी जाओ। फिर उसके बाद समय के अनुसार, ऐसा नहीं उसी समय बुलाए, समय के अनुसार सामने वाले को बुलाती थी, और सामने वाले को बुला करके फिर उसको उसकी विशेषताएं सुनाती थी। बाबा कहता है ऑपरेशन करो, पर क्लोरोफार्म तो दो बेचारे को, नहीं तो बेहोश हो जाएगा, मर जाएगा पेशेंट। तो मम्मा में बड़ी कला थी, बाबा इस बातों में नहीं जाता था, यज्ञ मम्मा ही संभालती थी। तो फिर वो जो गलती किया हुआ है उसको बुला करके मम्मा उसकी महिमा करती थी, तुम्हारे में ये विशेषताएं, तुम इतना अच्छा है, ये है, ये कर करके विशेषताएं बता के फिर उसको लास्ट में बोलती थी, ये थोड़ी सी जो बात है ना, अगर ये तुम ठीक कर दो ना, तो तुम्हारे साथ ही तुम्हारे खुश हो जाए। वो बोले, मम्मा मैं जरूर, आज से देखो मैं अपने ऊपर ध्यान रखू। ये स्नेह और शक्ति का बैलेंस। तो बाबा मम्मा ने हम लोगों को करके बताया, हमको नया कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉलो करने का काम करना है और कुछ नहीं करना। बाबा कहते हैं बच्चे डरो नहीं, बताओ उनको। बताने का तरीका सिर्फ सत्यता बताओ, परंतु सभ्यता को साथ में लेकर के बताओ। सभ्यता है तो सत्यता भी मीठी लगती है, नहीं तो कहते हैं सत्यता कड़वी होती है, कड़वी नहीं है वो। अभी बाबा की मुरली में था ना, कड़वी क्या होती है सत्यता। आजकल दवाइयां भी कैप्सूल में डाल के दे रहे, कड़वी डाल के दे रहे हैं ना, तो साइंस में वो ताकत है, तुम लोगों में ताकत नहीं है कि। तो बाबा ने हम बच्चों को सब युक्तियां बताई हुई हैं। उसके बाद आज हमें विश्व कल्याण करना, तो विश्व कल्याण करने के लिए भी क्योंकि बाबा ने सत्य ज्ञान दिया है, और ऐसा सत्य ज्ञान दिया है जो अभी तक किसी ने नहीं दिया, एकदम अपोजिट है दुनिया से, एकदम अलग है, एकदम अपोजिट। कहां सर्वव्यापी और कहां परम धाम का रहने वाला, कहां श्री कृष्ण गीता का भगवान और कहां शिव भगवान, कहां निर्लेप आत्मा और कहां लेप चेप वाली आत्मा, कितना फर्क है, एक एक पॉइंट में कितना फर्क है। परंतु बाबा कहते हैं तुम शक्ति रूप बन करके सामने वाले को सुनाओ। पर कौन सी दृष्टि रखो, तुम दृष्टि यही रखो, आत्मिक दृष्टि रखो, स्नेह की दृष्टि रखो, प्रेम की दृष्टि रखो, वो दृष्टि रख के पीछे उनको सुनाओ तो तुम्हारा उनको कड़वा नहीं लगेगा। आज मां भी बच्चों को बोलती है, परंतु बच्चे भी समझते हैं मां हमारे अच्छे के लिए बोल, उस समय पटपट पटपट करेंगे भले, परंतु समझते हैं हमारे अच्छे के लिए बोल। तो उसी प्रकार तुम भी ये पार्ट प्ले करो, सब औरों का कल्याण करो, सारे विश्व का, और स्नेह और शक्ति को साथ साथ में चलाते रहो, स्व परिवर्तन के लिए काम में लाओ, सहयोगियों के परिवर्तन, संपर्क वालों के परिवर्तन के काम में लाओ, विश्व परिवर्तन के काम में लाओ। विश्वास रखो, निश्चय रखो कि ये बदलना ही है, ये दुनिया जाने वाली है, रहने वाली नहीं है, परिवर्तन होना ही है। तो जब होना ही है, संशय नहीं है हमारे को, तो फिर इसीलिए सत्यता बताने में डरने की बात नहीं है, परंतु तरीके से बताओ। साकार बाबा कभी भी कभी कभी हंसते थे, बाबा कहता था देखो बच्चे जूता लगाओ ना, मखमल का जूता लगाना, जूता माना ये जूता ही हो गया ना, उनके लिए एकदम अपोजिट बात बताएंगे तो बेचारों को जूता लगेगा ना, परंतु मखमल का जूता लगाओ तो जरा नरम लगेगा ना उनको, नहीं तो तुम सीधा ही सीधा ठोकेगे तो उनको तकलीफ हो जाएगी। तो इसीलिए मैं समझती हूँ कि बाबा ने हर कार्य में हम बच्चों को, रोज के व्यवहार में भी, चाहे ज्ञानी होवे चाहे अज्ञानी होवे, उनके साथ भी पेश आते हुए अगर हम ये बैलेंस रख के चलते हैं, अगर वो भी तो आत्माएं हैं, वो भी हमारे ही भाई हैं, वो ही हमारी बहनें हैं, तो अगर रहम की दृष्टि रखते हैं, आत्मिक दृष्टि रखते हैं, स्नेह की दृष्टि रखते हैं, तो वो भी हमारे सहयोगी बन के स्वतः ही चलते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा सा बैलेंस चाहिए, स्नेह का और शक्ति का बैलेंस चाहिए, पर पहले ये अपने अंदर भरना पड़ेगा, तभी फिर हम औरों को भी उस बैलेंस पर चल सकेंगे। अगर हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो कभी कभी क्या हो जाता है, इनबैलेंस हो जाता है, कभी शक्ति एकदम इमर्ज हो जाती है, स्नेह गायब हो जाता है, कभी स्नेह ऐसा इमर्ज होता है जो स्नेह के बदले अटैचमेंट हो जाता है। तो इसीलिए स्नेह करो, स्नेह दो, परंतु निस्वार्थ स्नेह दो, स्वार्थ वाला स्नेह नहीं, अटैचमेंट वाला स्नेह नहीं। तो ये जब ही ध्यान में रखते हैं तभी हमारा जीवन सदा के लिए एक आदर्श जीवन बन जाता है। ओम शांति।